ओम शांति। वाणी चल रही थी 3968 तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी बाप इस ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। परंतु इस समय तो सब शूद्रवंशी हैं। सत्तर इकहत्तर साल हो गए बाप को ब्राह्मण सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना का काम करते करते, परंतु अभी तक भी सब शूद्रवंशी हैं। ये क्या बात हुई? ये बात कैसे संभव हो सकती है? हैं? शूद्र कहा जाता है व्यभिचारी को। कर्मेंद्रियों से भी विचारी है तो भी विचारी है, वाचा से दिल लगाकर कोई औरों से औरों से रज रज के बातें करते हैं तो भी विचारी है। दृष्टि से पतित होते रहते हैं, व्यभिचारी बनते रहते हैं तो भी व्यभिचारी हैं। और जब तक बाप के ऊपर पूरा निश्चय नहीं बैठा है, घड़ी घड़ी यह निश्चय बैठता रहता है, तो कहेंगे बाप को 100% पहचाना ही नहीं है। जब एक को जाना नहीं है तो भी कहेंगे घड़ी घड़ी बुद्धि व्यभिचारी बनती रहती है। और अब व्यभिचारी दुनिया तो अभी बनी नहीं है, आप भी विचारी दुनिया अर्थात सिविलाई, पावन दुनिया, पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। और इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता, तो कहेंगे सब शूद्र है। सत्युग में देवता वर्ण के थे, बाद में क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने, फिर शूद्र वर्ण के बने। यहां तो बाप कहते हैं जब तक पक्का ब्राह्मण नहीं बना है तब तक देवता वर्ण में जा नहीं सकते हैं। पता नहीं उनको ये बातें समझाई हैं या नहीं समझाई हैं। जिनको उद्घाटन करने के लिए बुलाया है समझाना चाहिए ये वर्ण ऐसे ऐसे फिरते हैं। बाबा जानते हैं कितने पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले है ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण वर्ण सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। इस समय तो सभी शूद्र ही शूद्र हैं। ब्राह्मण वर्ण के लिए जरूर ब्रह्मा चाहिए। अब ब्रह्मा कहां से आवे? ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? ब्रह्मा भी रचना कहेंगे। जैसे लौकिक परिवार में पहली पहली रचना ब्रह्मा माँ ही होती है, तो यहां देखो ये ब्रह्मा बैठा है। इसको अच्छी रीति समझाना चाहिए कि ब्रह्मा बगैर मानवीय सृष्टि की स्थापना नहीं हो सकती, और मानवीय सृष्टि में पहले पहले चाहिए ब्राह्मण। ब्राह्मण ही सो फिर देवता बनते हैं। ये ब्रह्मा भी देवता बनने वाला है। बना नहीं है, ब्रह्मा ब्राह्मण बना नहीं है, बनने वाला है। तो क्या है ये ब्रह्मा? भी शूद्र है। बाप किस में प्रवेश करते हैं? है बाप तो पति तन में ही आते हैं, इसमें बाप प्रवेश कर नालिश देते हैं, कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? नंबरवार ब्राह्मण वर्ण की, क्योंकि ब्राह्मणों की भक्ति मार्ग में भी नौ कुरियां गाई हुई हैं। दुनिया में भी नौ ही विशेष धर्म हैं जो नंबरवार भगवान से प्राप्ति करते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा जिन ब्राह्मणों की स्थापना होती है, उनको फिर शिक्षा दे करके क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों को भी शिक्षा देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्राह्मण तो नंबरवार है, तो ब्रह्मा द्वारा जैसे ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मणों के लिए बिचौलिया ब्रह्मा चाहिए। बनाने वाला तो शिव बाप ही है, परंतु किसके द्वारा बनाते हैं? ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। तो जो ब्राह्मण बनते हैं, उन ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए मीडिया चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? कौन सा मीडिया चाहिए? डॉक्टर बनाने के लिए डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, मास्टर बनाने के लिए मास्टर चाहिए। अब यहां ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए मीडिया चाहिए, तो नाम दिया है देवदेव महादेव। परंतु हम बाप से पढ़ रहे हैं। क्या न हम ब्रह्मा से पढ़ रहे हैं और न शंकर आत्मा अलग, जिसे महादेव कहा जाता है, वो हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला नहीं है। कौन है? आत्माओं का बाप हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला है, जिसको कहते हैं भगवान। परंतु भगवान वाच कैसे करे, किसके द्वारा करे? जो कहें भगवान वाच, ब्रह्मा के द्वारा वाच किया। तो शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। अब यहां तो है भगवान वाच, भगवान वाच करते हैं तो जरूर मुख से ज्ञान अमृत की वर्षा होती है। तो क्या ब्रह्मा मुख से जो वाच किया उसे ज्ञानामृत की वर्षा नहीं कहेंगे? हैं? क्यों? अमृत बनता ही तब है जब मंथन किया जाए। मंथन किए बगैर अमृत नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता। तो भगवान वाच वाच करते हैं, बोलते हैं। उन्होंने तो अर्जुन के प्रति कृष्ण का नाम डाल दिया है। लिख देते हैं कृष्ण भगवान वाच, फिर कृष्ण का बच्चा रूप बनाए, उसकी पूजा करते हैं। फिर कृष्ण भगवान को महाभारत युद्ध के बीच में शिक्षा देने वाला दिखाई दिए। अब युद्ध के बीच में बच्चा कैसे शिक्षा देगा? ये अर्जुन कौन था? किसको पता थोड़े ही है। अर्जुन जो ओटे सो अर्जुन, अव्वल नंबर का पुरुषार्थ करके जो जन्म जन्मांतर का भाग्य बनावे अव्वल नंबर में, उसका नाम अर्जुन रख दिया है। वर्णों का राज भी समझाना है। जो पहला पहला ब्राह्मण बनता है अथवा जिस नंबर का ब्राह्मण बनता है उसी नंबर का देवता बनता है, जो देवता सो फिर उसी नंबर का क्षत्रिय, उसी नंबर का वैश्य, उसी नंबर से शूद्र बनता है, फिर ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अभी हम जानते हैं कि हम यहां बाप के सामने बैठे हैं, हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण वर्ण के हैं। अगर कोई कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो फिर देवता कैसे बनेंगे? देवताओं में तो कौन सा विशेष गुण होता है? सहन शक्ति होती है, और सहन शक्ति को धारण कराने वाला ब्राह्मण बनने के लिए 100% सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाला चाहिए। जैसे लौकिक परिवार में भी बच्चों की पालना करने के लिए सहन शक्ति वाली, सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति माता चाहिए। ऐसे ये बेहद की सृष्टि है, बेहद का परिवार है। भारत में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम्। तो उसकी पालना करने के लिए बड़ी से बड़ी मां चाहिए। उस ब्रह्मा के बगैर कोई भी देवता नहीं बन सकता। ब्रह्मा के द्वारा ही देवता बनेंगे। अभी एडवांस पार्टी में ब्रह्मा कहाँ है? है? जब एडवांस कहा जाता है तो ज्ञान भी एडवांस है। ज्ञान के आधार पर हम समझते हैं कि जहां शिव है वहां शक्ति है। शक्ति को ही माता कहा जाता है। शिव परम धाम से आते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए। तो ज्ञान का बीज डालने के लिए मीडिया तो चाहिए। पांच तत्वों का पुतला तो चाहिए। तो कौन होता है? प्रजापिता ब्रह्मा। दोनों ही है, परंतु जिस पहले पैर के द्वारा शुरुआत होती है वो रुद्रमाला में जाएगा अथवा विजयमाला में जाएगा। है? रुद्र से पहली रचना तो रुद्रमाला की ही होती है। इस ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ, विष्णु ज्ञान यज्ञ, या 33 करोड़ देवताओं में से कोई का भी ज्ञान यज्ञ नहीं है। नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र माने विकराल रूप, रौद्र रूप धारण करने वाला, भक्ति मार्ग में शंकर को रुद्र कहा जाता है। परंतु शंकर क्या विकराल रूप धारण करता है? जिस सारी सृष्टि से असुरों का खात्मा हो जाए, करता है नहीं करता? असुरों का संहार किसके द्वारा गाया हुआ है? हैं? शक्तियों के द्वारा गाया हुआ है। और शक्तियों में भी कौन सी पहली पहली वो शक्ति है जो रुद्र का अव्वल नंबर कार्य करती है? महाकाली। तो महाकाल के साथ महाकाली का संयोग माना जाता है। ये रुद्र और रुद्राणी कौन सी माला हुई? रुद्र माला हुई। एडवांस पार्टी में, एडवांस ज्ञान में चलने वालों की बुद्धि में रुद्रमाला का पूरा ज्ञान है। माला के ऊपर में जो पहले पहले दो मणके हैं दाईं और बाईं ओर के, दोनों ही मणके समान रूप से शिव बाप के समीप हैं। भले एक फर्स्ट है और एक लास्ट है। तो महाकाली जो बनती है लास्ट में, असुर संहार कारिणी के रूप में प्रत्यक्ष होती है, उसमें सर्वोपरि पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? है ब्रह्मा। जैसे शंकर के लिए बोला है, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। क्या शंकर प्रैक्टिकल में कुछ भी कार्य नहीं करता, इसलिए मोस्टली उसके जो चित्र दिखाए जाते हैं किस रूप में दिखाते हैं? याद में बैठा हुआ दिखाया है। याद करना कोई कर्म थोड़े ही है, कर्म तो कर्मेंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे ही महाकाली के मस्तक पर भी जो पुराने पुराने महाकाली के चित्र मिले हैं उनमें शंकर की मूर्ति रखी हुई है। इसलिए कहा जाता है करणहार और करावनहार। परंतु महाकाली का शरीर और महाकाली में पार्ट बजाने वाली आत्मा जिसका असुरों से विशेष हिसाब किताब है, वो आत्मा कौन है? वो आत्मा वास्तव में महाकाली नहीं है, जो जगदम्बा होती है वास्तव में वो ब्रह्मा की ही आत्मा है, जो सब धर्मों की आत्माओं को आत्मसात करके रहती है, गोद में बिठा के पालना देती है। बच्चे चाहे जितने शैतान हों, माँ का प्राण लेवा बच्चा क्यों न हो, तो भी माँ उसे सहनशीलता पूर्वक धारण करती है। अब यहाँ संगम युग में तो हिसाब किताब भी बनते हैं। त्रेसठ जन्मों में एक गुना पाप चढ़ता है पाप कर्म का, और यहाँ ब्राह्मण बनने के बाद 100 गुना पाप चढ़ता है। तो जिन बच्चों ने ब्रह्मा की पालना लेते हुए भी सहन शक्ति का आगार आत्मा से श्रेष्ठ पालना लेते हुए भी पाप कर्म बनाए हैं, उनका हिसाब किताब कहां चुकतू होगा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, हिसाब किताब चुकतू होगा या नहीं होगा, किस रूप से चुकतू होगा। शंकर के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाया जाता है, परंतु शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है। क्यों? क्योंकि जो शिव का पार्ट है वो शंकर के द्वारा लक्षित होता है। शिव तो सदैव प्यार का सागर है, इसलिए कहते हैं कि मैं धर्मराज नहीं हूं लेकिन मेरे साथ धर्मराज है। वही आत्मा जिसके साथ बच्चों का 100 गुना पाप का हिसाब किताब बना, आसुरी बच्चों का खास करके, उनसे हिसाब किताब लेता हूं। शंकर द्वारा नहीं लेता हूं, किसके द्वारा लेता हूं? है हाँ, जो सहयोगिनी शक्ति है महाकाली के द्वारा, महाकाल उन आतताई बच्चों से अपना हिसाब किताब लेता है। तो ये तो बाप का वो रूप नहीं हुआ जो आदि में ब्रह्मा के साथ प्रजापिता दिखाया गया है। नाम पड़ता है प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि अभी अभी बोला इस दुनिया में अभी सब शूद्र संप्रदाय है, एडवांस पार्टी में भी क्या कहें, नंबरवार शूद्र संप्रदाय है। फिर उनको ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो क्षत्रिय भी बनना है, क्योंकि जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं, जो देवता बनते हैं वही क्षत्रिय भी बनते हैं। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ब्राह्मण सो देवता वर्ण की स्थापना के लिए माता चाहिए या नहीं चाहिए? है माता तो जरूर चाहिए। अभी तो अव्यक्त वाणी में बोल दिया, माता तो गुप्त हो गई, बाप के लिए तो फिर भी कहा, दुनिया वालों की नजरों के सामने गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, लेकिन मां तो दिखाई नहीं देती, बच्चों के सामने भी दिखाई नहीं देती, पूरा ही घूंघट में है। तो जब माई नहीं है तो इतना दिन दूना रात चौगुना बढ़ने वाला एडवांस परिवार, उसकी पालना करने वाली माँ चाहिए या नहीं चाहिए? है, माँ तो जरूर चाहिए। तो बताया कंबाइंड रूप है, जिसको ब्राह्मणों की भाषा में क्या कहा जाता है, बाप दादा। जब तक मां प्रत्यक्ष नहीं होती है ब्राह्मणों के सामने, तब तक ब्रह्मा की सोली ही कंबाइंड रूप में राम बाप के शरीर से अर्धनारीश्वरी के रूप में पार्ट बजाती है। उससे बच्चों को प्यार भी मिलता है। जो रुद्रमाला के आतताई बच्चे हैं उनको भी प्यार मिलता है। तो बोला ब्रह्मा की औलाद तो सब हैं, ऐसे नहीं रुद्रमाला के मन के रूपी आत्मा ही ब्रह्मा की औलाद बनती है, या ब्रह्मा कुमार कुमारी ही ब्रह्मा की औलाद बनते हैं? नहीं, जो भी 500-700 करोड़ की दुनिया की आत्माएं हैं वो सब ब्रह्मा की औलाद हैं, आगे या पीछे। पांच सौ करोड़ भी रुद्रमाला के मणके हैं। तो कोई ऐसे कहे कि हमारा तो ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, हम तो सिर्फ शिव बाबा से लेंगे, शिव निराकार ज्योति बिंदु और बाबा साकार, दोनों का मेल हमें मिल गया, हमें कोई तीसरी आत्मा से लेना देना नहीं है। तो ये रंग है, ब्रह्मा से तो कनेक्शन रखना पड़े, ब्रह्मा के द्वारा ही बनेंगे। नहीं तो शिव बाबा ने कैसे किस द्वारा कहा कि मुझे याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही तो कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, तभी तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आवेगा। शिव बाबा अभी भी पढ़ाने वाला कौन है, हैं? शिव बाबा न कि शंकर ताऊ, हैं? शिव बाबा पढ़ाने वाला है। और शिव बाबा हमको किसके तन से पढ़ाते हैं? ताऊ के तन से। मुरली बोला शंकर तो कुछ करता ही नहीं है, फिर उसमें करता धरता करने वाला है कौन? करता नहीं है, ये तो नहीं कहा, कराता नहीं है, मैं प्रेरणा नहीं देता हूं, ये किसने कहा? शिव ने कहा। मैं अगर प्रेरणा देने वाला होता तो मुझे परमधाम से यहां आने की दरकार ही नहीं। तो मैं प्रेरणा नहीं देता हूं, न मैं सर्वव्यापी हूं जो सबके अंदर प्रेरणा देता हूं। फिर प्रेरणा शब्द कहां से आ गया, शुरुआत कहां से हुई? अरे कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, कहीं से तो आरंभ हुआ। अगर आरंभ हुआ तो प्रेरणा देने वाला कौन? शक्तियों के द्वारा विनाश कराते हैं, शक्तियां असुर संहारिणी है, फिर उनको प्रेरणा कौन देता है? हैं? शक्तियों को प्रेरक कौन है? शिव बाबा ब्रह्मा के तन से पढ़ाते हैं, माना राम वाली आत्मा अपने अंतिम जन्म में जिस तन के द्वारा संसार में शिव बाप प्रत्यक्ष होते हैं, उस जन्म में पहले ब्रह्मा कुमार बनती है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बनती है? पहले तो ब्रह्मा को ही पहचानती है ना, तो जब ब्रह्मा कुमार बनी, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है शिशु, तो किसके लिए अर्पण में कहा जाता है? हैं? मां बाप के लिए, मां के लिए अर्पण होता है। तो ऐसे ही वो राम वाली आत्मा अपने जीवन को किस आत्मा के प्रति अर्पण में बनाती है? ब्रह्मा के लिए अर्पण में बनाती है। तन अर्पण करे या धन अर्पण करे, जो भी कौड़ी पूंजी है अर्पण करे, तो ब्रह्मा बीच में बैठा हुआ है, चाहे व्यक्त में और चाहे अव्यक्त में, वो लेने वाला है। इसलिए दान देते हैं दुनिया में तो शूद्रों को देते हैं, वैश्यों को देते हैं, किसको देते हैं? ब्राह्मणों को ही दान देते हैं। तो दान लेने वाला शिव नहीं है, वो अगर लेने वाला हो तो देने वाला भी बने, उसका लेने और देने का किसी के साथ हिसाब किताब है ही नहीं। तो ब्रह्मा वाली आत्मा लेने वाली है, तो तन किसका हुआ? है? जिसको दे दिया उसका हुआ या देने के बाद भी वापस ले लिया? है? दिया सो दिया, इसलिए बोला कि शिव बाबा किसके तन से पढ़ाते हैं? ब्रह्मा के तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा भी बाबा है लेकिन बीच में है। क्या? ब्रह्मा भी बाबा है लेकिन कहाँ है? बीच में है। कौन कौन के बीच में है? है शिव बाप और राम बाप के बीच में। तो कहेंगे कि ब्राह्मण बनने वगैरह कोई भी देवता बन नहीं सकेंगे। मैं जिस रथ में आता हूं उनको भी अच्छी तरह जानना चाहिए। क्या? किस रथ में आता हूं मैं? मैं कहने वाला कौन? बाप? अम्मा नहीं, शिव मां तो बनता है लेकिन यहां मैं कहने वाला बाप का रूप है जो आत्माओं का बाप है। वो कहते हैं कि मैं जिस रथ में आता हूं उनको भी जानना चाहिए। भी क्यों लगा दिया? माना ब्रह्मा को भी जानना चाहिए और जिस रथ में मुकर्रर रूप से आता हूं उस रथ को भी जानना चाहिए। क्या है जानने की बात? जिस मुकर्रर रथ में आता हूं वो रथ भी अर्पण मन है या नहीं है? संपूर्ण समर्पण है तो समर्पण कराने के योग्य है सारी दुनिया को। अगर खुद ही अर्पण में नहीं है तो दुनिया भी अर्पण में नहीं बन सकती। तो इस रथ को भी जानना चाहिए। जो शूद्र कुमार कुमारियां हैं, कौन? जो शूद्र कुमार कुमारियां हैं, शूद्रों की परिभाषा क्या बताई है? व्यभिचारी। जो शूद्र कुमार कुमारियां हैं वो तो मुझे याद भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं याद कर सकते? क्योंकि जब जब जितना जितना भी विचारी बनते रहेंगे तब तब अनुभव करेंगे कि बाप की याद आने में मुश्किलात होती है या सहज राजयोग में चल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। तो बोला कि जब तक ब्रह्मा को बाप नहीं बनाया है तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाते हैं। ये बात बुद्धि में आनी चाहिए। इसलिए बोला समर्पित होने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने भी बोला अव्यक्त वाणी में कि ऐसे नहीं समझना, ये फर्स्ट और लास्ट समर्पण समारोह है। नहीं, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह मनावेंगे। क्या इशारा दिया है? चाहे वो बेसिक के हो चाहे एडवांस के हो, अभी संसार के बीच में एवरलास्टिंग प्रत्यक्षता हुई है, एवरलास्टिंग प्रत्यक्षता अभी भी नहीं हुई है। जब एवरलास्टिंग प्रत्यक्षता होगी तो तुम बच्चों का जो विशेष वरदान है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार चलेगा, जो परिवार के भांति अभी लगातार विरोध कर रहे हैं, वो भी क्या हो जावेंगे, हैं? सहयोगी बन जावेंगे। और उस समय सारी दुनिया मानेगी कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, लेकिन हम सब का बाप आया हुआ है। इस्लाम धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, या बौद्ध आदि कोई भी धर्म के हो, जो सुनेगा, जो देखेगा, जो संपर्क में आवेगा, संसर्ग में आवेगा, उसके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी कि हमारा बाप आ गया है। तो ये बात बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए बाप आया है, और ब्राह्मण बनना चाहिए। क्या है? बनना चाहिए माना, माने बन नहीं रहे हैं, बने नहीं हैं, बनना चाहिए, नहीं तो देवता देवता बन नहीं सकेंगे। ब्रह्मा को बाबा न कहें तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपन को नहीं समझते तो गोया शूद्र है, शूद्र से फिर देवता बने बड़ा मुश्किल। ब्राह्मण बना शिव बाबा को याद करने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? इस बात में मुझने की दरकार नहीं है। ब्राह्मण माना पवित्र, ब्राह्मण माने ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा का खून चाहिए, ब्रह्मा का फॉलोअर चाहिए। फॉलो दो प्रकार से होता है, एक कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना और दूसरा ब्रह्मा के मुख से जो भी महावाक्य उच्चारण किए गए उन वाक्यों को फॉलो करना, अथवा तो वर्तमान रूप में जो भी कंबाइंड पार्टधारी है, अर्धनारी ईश्वर के रूप में भक्ति मार्ग में यादगार है, उसके डायरेक्शंस को फॉलो करना। ब्रह्मा है करणहार का रूप, بچوں سے کرانے کے لیے فورس نہیں ڈالا کبھی. بچے کریں یا نہ کریں, پرنتو خود کر کے دکھایا. وہ ہے کرنہار کا روپ اور دوسرا ہے کراونہار کا روپ. خود کرے یا نہ کرے, کوئی بھی کرم کرے یا نہ کرے, لیکن بچوں سے کرا کے چھوڑے گا. کراونہار کا روپ ہے. تو بولا اس بات میں مجھنے کی درکار نہیں ہے, تو بچوں کو ادگھاٹن کرنے والے کو بھی سمجھانا ہے. ہمارا اصلی ادگھاٹن تو باپ دوارا ہو چکا ہے. کیا آپ کو تو ایسے ہی نمت ماتر بلایا ہے تاکہ آپ کی بدھی میں بھی بیٹھے, لیکن واسطو میں جو نئی دنیا کا ادگھاٹن ہے وہ تو باپ دوارا ہو چکا ہے. جو باپ کے روپ میں منشی سشتی کا جو باپ ہے اس کی من بدھی میں نئی دنیا کا اسپشٹ خاکہ کھچ چکا ہے. ادگھاٹن تو ہو گیا, اب آپ کو بلایا ہے کہ آپ کی بدھی میں بھی وہ خاکہ کھینچ جائے. اس لیے ابھی ہم آپ کے دوارا اس برانچ کا ادگھاٹن کراتے ہیں. تو آپ کا بھی کلیان ہو جائے گا. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس دنیا کے حساب سے جو بڑے آدمی مانے جاتے ہیں وہ سمجھیں گے مانیں گے اور کہیں گے یہ ٹھیک باتیں ہیں, تو ان کا کہنا سبھی لوگ مانیں گے. بھگوان تو گپت ویش میں آتا ہے, اس کا کہنا سبھی لوگ نہیں مانیں گے. اور جو بھگوان پنڈا باپ کے بچے ہیں پانڈو, وہ بھی گپت ہیں, ان کو بھی کوئی پہچانتے نہیں ہے. تو نہ پہچاننے کے کارن ان کی بھی بات کوئی مانیں گے نہیں. تو ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ صرف اس اونچتے اونچ باپ کو پہچان کر جان کر یاد کرو تو آپ کے بھی جنم جنمانتر کے پاپ کٹ جاویں گے. اس بات کو اچھی ریتی سمجھنا ہے کہ وہ اونچتے اونچ باپ ہی پتت پاون ہے. سب پتتوں کو پاون بنانے والا ہے, ساری دنیا پتت ہے. پتت مانا ہے پتن کے گرت میں گرا ہوا, सारी दुनिया जो धन कमाती है, कितना कितना धन कमाते हैं, है हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों धन कमाते हैं, पेट में कितना जाता है, दो रोटी, और बाकी सब कहां चला जाता है, है? मान लो सोन हलवा बना बना के खाते हैं, सोन भस्म मिला के खाते हैं, सोने की भस्म होती है ना, उससे ज्यादा तो कीमती कोई चीज खाने की होती नहीं है, वो भी खाते हैं, तो खाने के बाद ताकत तो दिखाई देगी ना, वो सारी ताकत कहां जाती है, आसमान में जाती है या गड्ढे में नालियों में जाती है, सारी नालियों में चली जाती है, गड्ढे में जाती है, तो पतन हुआ या उत्थान हुआ, सारी दुनिया पतन के गर्त में जा रही है, सारी दुनिया को उस पतन से बचाने वाला कोई भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और 5000 वर्ष बीत गए, कोई भी इस पतन को रोक नहीं सका, अभी बाप आया हुआ है जो सब पतितों को पावन बनाने वाला है। आप भी पतित से पावन बन करके देवता बन जावेंगे, पावन की पूजा की जाती है, पतन के गर्त में जाने वाले की कोई पूजा नहीं करता, जैसे बड़े बड़े नेताओं के चित्र बनावेंगे, मूर्तियां बनावेंगे, परंतु उनकी पूजा नहीं करेंगे, तो बच्चे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, उद्घाटन कराने वालों की भी सर्विस कर सकते हो, क्योंकि तुमको मंदिर ठिकानों आदि में भी पैगाम पहुंचाना है, कितने कितने ठिकाने बनाए हुए हैं, हिंदुओं ने मंदिर बनाए हुए हैं, अंग्रेजों ने गिरजाघर बनाए हुए हैं, सिखों ने गुरुद्वारे बनाए हुए हैं, मुसलमानों ने मस्जिद बनाई हुई है, वो सब ठिकाने हैं बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन सबकी बुद्धि ठिकाने लगती है या तिरक जाती है, सबकी बुद्धि तिरक जाती, चाहे जितने भी ठिकाने बनाए हों। अभी बेहद के बाप ने कहा है, अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो और मुझे याद करो, तुम सब ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम सब बिंदु बिंदु आत्माओं का एक ही बाप है, जो सब आत्माओं को आत्मिक स्थिति में ले जाने वाला है, बाप कहते हैं कि मैं ही सर्व का सदगति दाता हूं, पहले पहले तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्माओं की सदगति करता हूं, दुर्गति और सदगति, दुर्गति माने दुह माने खराब, और गति माने चाल, खराब गति क्या होती है, है? तुम्हारे गड्ढे में जाना दुर्गति और सत्य धाम में जाना सदगति। सत्य को भी सत्य धाम कहा जाता है। तो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। वो कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो भी पाप हैं वो सब कट जाएंगे, क्योंकि मैं ही निष्पाप हूं। क्या दुनिया में इतने 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, उन मनुष्यों की आत्माएं हैं, लेकिन सब पाप आत्माएं बनते हैं। उन आत्माओं के बीच में अभी इस दुनिया में पार्ट बजाने वाला सिर्फ एक ही आत्मा है जो निष्पाप है। वो कभी भी पाप नहीं करती, सदैव ही कल्याणकारी है, अकल्याण कभी भी किसी का नहीं करती। कोई उसे न समझ पाए तो बात दूसरी है। समझे, ये वाचा से बोला, ये भगवान का महावाक्य, ये तो झूठा है। तो भगवान भी झूठा होता है क्या? है मुरली में ब्रह्मा के मुख से बोला, आने वाले 10 वर्ष में ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो कहने वालों ने कहा ना कि भगवान ने ऐसा झूठा कैसे बोल दिया। झूठा बोलने वाला कल्याणकारी होता है या अकल्याणकारी होता है? वो तो अकल्याणकारी होता है, ये तो भारी अकल्याण कर दिया। लेकिन क्या ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली वो अकल्याणकारी साबित हुई है? न समझ पाने के कारण अभी भी ऐसे बेसमझू कृष्ण बच्चा वाली आत्मा के फॉलोअर बैठे हुए हैं, जो ये समझते हैं कि ब्रह्मा मुख से बोला वो संक्षेत्र के लिए झूठ बोल दिया, ब्रह्मा के वाक्यों से भी श्रद्धा हटी हुई है। और श्रद्धा हटने का कारण ही ये है कि दीदी दादी दादाओं की बातें सुनते हैं, उनके भाषण बड़े प्यार से सुनते हैं। जब ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी चलती है तो सोते हैं। इसे क्या साबित होता है कि ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चली वो सच्ची वाणी चली या झूठी वाणी चली? है नहीं, ये साबित होता है कि उनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि ब्रह्मा के द्वारा भी जो वाणी चली वो झूठी वाणी है। तो भगवान बाप कभी झूठा नहीं हो सकता, जो बोला सो सत्य। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत्य और हो सी भी सत्य। असत्य का नाम निशान नहीं है, इसलिए उसको सतगुरु कहा जाता है। ये पैगाम तुम किसको भी दे सकते हो, और जास्ती बकवास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पैगाम देना है बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब तुम करो या न करो तुम्हारी मर्जी, हम पैगाम देकर जाते हैं, जब तुम्हें दरकार हो तो चले आना।
अरे
और कोई रीति तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है।
अरे बड़े निश्चय पूर्वक बोल रहे,
जब तुम्हें सर्विस के लिए फुर्सत हो तब हमारी बात मानना और ये ईश्वरीय सेवा करना। तुम बच्चों को भी समय तो बहुत मिलता है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।